सुबह के 11 बज रहे थे। राजवीर के जाने के बाद आकांक्षा और जानवी दोनों हॉल में बैठकर अपना प्रोजेक्ट बना रही थी। उन दोनों का मन अभी भी मोहनदास जी की बातों में उलझा था। जानवी ने अचानक पूछा, अक्षु तुझे क्या लगता है, क्या ये पिशाच, डायन, चुड़ैल, भूत वगैरह सच में होते हैं या ये सब हमारे मन का वहम है? पता नहीं यार, देखा नहीं न्यूज़ में कैसे आए दिन जंगल के बाहर लाशें मिल रही हैं और उनकी गर्दन के पास किसी जानवर के काटने का निशान भी। अगर सच में जंगल में कोई जानवर है जो लोगों को मारता है तो वो सबको गर्दन के पास ही क्यों काटता है और हमेशा उसी जगह पर ही क्यों? आकांक्षा ने उसके सवालों के जवाब देने के बजाय और नए सवाल खड़े कर दिए। दोनों बात करते हुए साथ में काम भी कर रही थीं, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था। जानवी ने पेपर कटर से पेपर काटते हुए कहा, पता नहीं यार क्या सच है और क्या वहम, कब से दिमाग उसी में लगा है, कुछ और करने का मन ही नहीं करता। ऊपर से ये प्रोजेक्ट नाम की बला सिर पर मंडरा रही है। जानवी का सारा ध्यान बातों में था, इस वजह से पेपर कटर से उसका हाथ कट गया। कट गहरा लगने की वजह से उसमें बहुत खून बहने लगा। आकांक्षा उसे देखकर बहुत घबरा गई। ये क्या किया तूने जानवी, देख कितना खून बह रहा है, तो भी ना बस जब देखो पटर पटर करती रहती है, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? कहीं हमारे आसपास कोई पिशाच हुआ और मेरा खून देखकर यहाँ पर आ गया तो? कुछ कर अक्षु, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जानवी को ऐसी परिस्थिति में भी मजाक सूझ रहा था। तेरा कट तो बहुत डीप है यार, हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं घाव का खून रोकने के लिए कुछ बांध देती हूँ। जानवी दर्द से चिल्लाते हुए बोली, आ जो करना है जल्दी कर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आकांक्षा दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। उसने जानवी की चोट को साफ कर उस पर बैंडेज कर दिया। जानवी मैंने पट्टी बांध दी है, उसके बावजूद तेरा खून ही नहीं रुक रहा, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो एक काम कर, मेरे पीछे बैठ, मैं स्कूटी चलाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं रास्ते में कोई पिशाच मिल गया और मेरा खून देखकर मेरे पास आ गया तो? अगर मिल गया तो मैं उसे डील कर लूँगी, मैं उसे बोल दूँगी कि तेरे बदले किसी और जानवर का खून ले ले। आकांक्षा ने उसकी टांग खींची। जानवी ने आँखें तरेर कर जवाब दिया, मैं क्या तुझे जानवर दिखाई देती हूँ जो तू मेरे बदले किसी और जानवर का खून देगी? हाय, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, एक अच्छी खासी लड़की की तुलना जानवर से की जा रही है? ये सुनने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई, या तुझे कोई पिशाच उठाकर क्यों नहीं ले गया? उसकी बात सुनकर आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, बस कर ड्रामा क्वीन, और हाँ अब तुझे दर्द नहीं हो रहा मुझसे बहस करते हुए? चल आ जा जल्दी से, घर को लॉक करके चलते हैं, दद्दू को भी बताना पड़ेगा, वरना वो यहाँ पर आए और हम घर पर नहीं मिले तो पूरे शिमला सिर पर उठा लेंगे। आकांक्षा जानवी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई। रास्ते में जानवी ने राजवीर जी को फोन पर सब बता दिया। कुछ देर बाद वो लोग सिटी हॉस्पिटल में थे। जानवी की चोट पर डॉक्टर स्टिचेस लगा रहे थे, जबकि आकांक्षा बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वो वहां बाहर वेटिंग एरिया के एक बेंच पर बैठी थी कि तभी इंस्पेक्टर दुबे एक डॉक्टर के साथ उसी तरफ आए। इंस्पेक्टर दुबे ने पूछा, डॉक्टर क्या उस लड़के की लाश को कोई लेने आया जिसकी लाश 3 दिन पहले उन्हीं जंगलों के बाहर मिली थी? नहीं इंस्पेक्टर, अभी तक तो कोई भी नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा भी, हमें उसका अंतिम संस्कार करवा देना चाहिए। उस लड़की के पास से भी कुछ ज्यादा सामान बरामद नहीं हुआ जिससे उसके बारे में पता लगाया जा सके। उसके बैग में कुछ खाने पीने का सामान था और साथ में 2-3 किताबें और एक स्लिप। लगता है उस लड़की ने यहीं शिमला की किसी लाइब्रेरी से बुक सैंक्शन करवाई थी। अब लड़के का नाम पता अच्छे से नहीं मालूम तो कौन जगह जगह जाकर उसके बारे में पता लगाए? उन सभी किताबों की एक ही खासियत है कि वो सभी किताबें पिशाचों के ऊपर थीं। ऊपर से उसके लाश 3 जंगलों के बाहर मिली थी, उनमें पिशाचों में होने की अफवाह भी फैली हुई है। लगता है वो लड़का जंगल में पिशाच को ढूंढने गया था, इंस्पेक्टर दुबे ने कहा। वैसे तो साइंस इंसान अंधविश्वास में बिलीव नहीं करती है, लेकिन इतने सारे लोगों का एक ही तरीके से मरना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? इन लोगों की डेड बॉडी में खून की एक बूंद भी नहीं मिली है। इसके अलावा सभी डेड बॉडीज की गर्दन के राइट साइड ही जानवर के काटने के निशान हैं। काटने का तरीका और निशान हर बार एक ही होता है, डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब, अब इतनी हिम्मत भी किसी की नहीं पड़ती कि जंगल में जाकर पूरी खोजबीन करके आए, हमें तो रिपोर्ट देनी है, वो दे देंगे। वो दोनों आकांक्षा से थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी बातें आकांक्षा के कानों में आराम से पड़ रही थीं और उसने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। उनकी बात खत्म होते ही डॉक्टर वहां से चले गए। दुबे वहां खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्हें वहां रुका हुआ देखकर ना चाहते हुए भी आकांक्षा के कदम इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ गए। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं वो किताबें देख सकती हूँ? इंस्पेक्टर दुबे ने पूछा। और आप कौन हैं? वो किताबें विक्टिम के पास से मिली हैं तो वो किताबें मैं आपको नहीं दे सकता। मैं आपको उस लड़के की फैमिली तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। कल ही मैं लाइब्रेरी गई थी, तब उस लड़के के बारे में वहाँ के लाइब्रेरियन पूछ रहे थे। वो आपके लड़के के परिवार तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। वहाँ पर उस लड़के का फ़ोन नंबर भी लिखा था, उसके जरिए भी उसके बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। आकांक्षा की बात सुनकर इंस्पेक्टर दुबे चिढ़कर बोले, बस बस हमें अपना काम मत सिखाओ, और तुम उस लड़के को कैसे जानती हो? दुबे ने उसकी तरफ संदेह भरी नज़रों से देखा। जानती तो नहीं, लेकिन उन बुक्स के जरिए हम लाइब्रेरी में जाकर पूछताछ करेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए। देखिए मैडम, ये पूछताछ करने का काम हमारा है, आपका नहीं, तो आप इन सबसे दूर रहिए, इसी में आपकी भलाई है। रही बात वो किताबें देने की, तो वो विक्टिम के पास से मिली हैं, तो वो किताबें आपको नहीं मिल सकती, आप ये सोचिएगा भी मत, दुबे ने उसे झिड़क दिया। लेकिन मुझे वो बुक्स देखनी थी, एक बार आप मुझे वो किताबें दे दीजिए प्लीज। वो किताबें आपको नहीं मिल सकती मैडम, आप क्यों अपना वक्त जाया कर रही हैं, आकांक्षा ने कहा। बुक्स तो मैं लेकर रहूंगी, जब आप लाइब्रेरी में जमा करवा देंगे उसके बाद ले लूंगी। वो किताबें आप लाइब्रेरी में जमा नहीं होंगी, क्या पता उन बुक्स की वजह से उस लड़के की जान गई हो। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि तभी जानवी भी वहां पहुंच गई। दुबे को देखकर उसने उनके पैर छूकर बोला, अरे दुबे अंकल आप यहाँ? खुश रहो बेटा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये चोट? उन्हें आराम से बात करते देख आकांक्षा ने हैरानी से पूछा, जानवी तुम जानती हो इनको? हाँ अक्षु, ये मेरे मौसा जी हैं, पर तुम इनसे क्यों बहस कर रही हो? देखना जानवी कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, याद है कल उस लड़के की लाश देखकर मैं बेहोश हो गई थी? वो वही लड़का था जो लाइब्रेरी से बुक्स लेकर गया था। हम जिन बुक्स को ढूंढ रहे थे वो अब इनके पास हैं और ये हमें देने से मना कर रहे हैं, आकांक्षा ने मुंह बनाकर कहा। प्लीज अंकल बस सिर्फ एक दिन के लिए हमें वी दीजिए, अब जानवी भी उनसे किताबों की जिद करने लगी। इंस्पेक्टर दुबे जो अब तक आकांक्षा से थोड़ा सख्ती से बात कर रहे थे, उन्होंने अब थोड़ा नरमी से बोला, देखो बच्चियों ये मेरी जॉब का सवाल है, अगर किसी को पता चल गया तो? पर अंकल किसी को क्यों पता चलेगा, प्लीज आप हमें वो बुक्स दे दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, जानवी उनसे बच्चों की तरह जिद करने लगी।
इंस्पेक्टर दुबे ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ठीक है लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, कल इसी वक्त आकर तुम दोनों मुझे वो किताबें पुलिस स्टेशन में जमा करवाओगी। आकांक्षा और जानवी एक साथ चहक कर बोली, हाँ अंकल प्रॉमिस। इंस्पेक्टर दुबे उन दोनों के साथ रिसेप्शन पर गए जहां उन्हें उस लड़के का सारा सामान दिया गया। एक छोटे से बैग के अंदर वो तीन किताबें भी मौजूद थीं जो उस लड़के ने लाइब्रेरी से सैंक्शन करवाई थीं। इंस्पेक्टर दुबे ने सबकी नज़रों से छुपकर धीरे से वो किताबें उन दोनों को पकड़ा दीं, जिसे लेकर वो घर आ गईं। रात का समय के 12 बज रहे थे, चारों तरफ शांति पसरी थी। तभी अचानक से जंगलों के अंदर बहुत ही भयानक स्वर होने लगा, जिसने एक ही पल में वहां मौजूद शांति को नष्ट कर दिया। अचानक चारों तरफ धूल का उड़ने लगी, ऐसा लग रहा था मानो आधी रात को धूल का बवंडर आया हो। धरती में एक अलग ही कंपन हो रहा था, मानो कोई पेड़ों को उखाड़ रहा हो। वो कंपन इतना तेज था कि उससे दूर दूर तक की जमीन हिल रही थी। जंगल का माहौल बहुत ही भयावह होता जा रहा था, मानो 1850 का इतिहास आज खुद को दोहरा रहा था। जो आज से इतने सालों पहले हुआ था वही मौत का मंजर आज फिर छाया हुआ था। ऐसा होने की एकमात्र वजह थी कि जंगल में रिवांश अपने उन्हीं कपटी साथियों रवि, रघु, विजय, संजय के साथ अपने असली शैतानी रूप में थे और उन चारों पिशाचों ने मिलकर पीछे से रिवांश पर हमला बोल दिया था। रिवांश ने चारों को एक झटके में दूर फेंकते हुए कहा, भले ही आज से कुछ साल पहले हम कमजोर थे, उसने जोर से गुर्राते हुए बोला, लेकिन आज नहीं, पिशाचों के इतिहास में हमसे शक्तिशाली आज तक नहीं हुआ। वो चारों कमजोर नजरों से रिवांश की तरफ देख रहे थे। आपने हमारी दोस्ती और मासूमियत का फायदा उठाया और आप लोगों की वजह से आज हम ये शापित जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। ना जाने हमने अनजाने में कितने मासूमों का खून कर दिया, लेकिन अब जब हम दरिंदे बन ही गए हैं तो सबसे पहले तुम चारों गद्दारों को खत्म कर देंगे। रिवांश सपने बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसे करीब आता देख रघु हिम्मत करके खड़ा हुआ और उसने पास का पेड़ उखाड़ कर रिवांश पर हमला बोल दिया, मासूम तो आप तब भी नहीं थे युवराज, अनजाने में ही सही आपने भी एक बहुत बड़ा पाप किया था जिसकी वजह से आप ये जीवन बिताने पर मजबूर हो। मासूमों की रक्षा करने के लिए आपका भगवान आता है, लेकिन गुनहगारों के लिए शैतान आता है, तभी उस रोज आपका भगवान नहीं हमारा शैतान आया था। रिवांश ने उस पेड़ को पकड़कर वापस उसी की तरफ वापस फेंक दिया। अनजाने में की गई गलती की कोई सजा नहीं होती है, हमें समझ नहीं थी जब हमसे वो पाप हुआ था, संजय ने एक बार फिर पीछे से वार करते किया। उसके वार से रिवांश थोड़ा लड़खड़ा गया, अब तो समझ है ना, अब क्यों उन मासूम लोगों का खून पीते हो? तुम्हारे ग्रह नक्षत्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, इसी वजह से हमने तुम्हें उस पूजा में बिठाया था। तुम्हें नहीं पता जिनके नक्षत्र शक्तिशाली होते हैं उन्हें कभी कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन फिर न शैतान की परछाई तक तुम पर हावी हो गई। तुम्हारे उस अनजाने में किए गए पाप की वजह से शैतान ने तुम्हारी आत्मा को अपने काबू में कर लिया। रिवांश ने गुस्से में उसे उठाकर वहां से दूर फेंक दिया और जोर से गुर्राते हुए बोला, तुम लोगों ने तो तब भी हमें छला था और आज भी पीछे से वार, भूल गए क्या? पिशाचों में सबसे शक्तिशाली पिशाच हम हैं, बाकी तुम लोगों की हमारे आगे कोई औकात नहीं, ना कल थी और ना ही आज। वो चारों मात खा चुके थे, रघु और संजय को तो उसने पहले ही उठाकर दूर फेंक दिया था, रवि और विजय अभी भी वहीं पर गिरे हुए पड़े थे। वो वहां से जाने लगा तो उस दोनों ने मौका देखकर उस पर दो तरफा वार किया, कभी तुम्हारी भी कोई कमजोरी होगी जिसकी वजह से तुम्हें भी एक दिन हार का सामना करना पड़ेगा, उस दिन इस जंगल और पिशाचों के राजा तुम नहीं हम बनेंगे, रवि गुस्से में गुर्राया। रिवांश ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों का गला पकड़कर हंसते हुए कहा, चार चार राजा, तब भी तुम चारों जाहिल इसी तरह लड़ोगे और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओगे। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तुम चारों क्यों बार बार हमसे भिड़ने के लिए आ जाते हो, जबकि पता है कि हर बार मात तुम चारों की ही होगी। यहाँ अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत प्रदर्शन करते रहो, क्योंकि इस जंगल के बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं, विजय ने अटकते हुए कहा। ओह, औकात तो तुम्हारी भी नहीं है। इस जंगल के बाहर भले ही तुम होंगे सबसे शक्तिशाली पिशाच, लेकिन हो तो एक पिशाच ही, और तुम भी जानते हो कि पिशाच चाहे शक्तिशाली हो या कमजोर, छोटा हो या बड़ा, उन सब की कमजोरी एक ही होती है। रिवांश ने गुस्से में उन दोनों को उठाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। उससे जंगल में एक बहुत ही भयानक स्वर उत्पन्न हुआ। शिमला में इतना भयानक कंपन हुआ मानो वहां कोई भूकंप आया हो। रिवांश ने गुस्से में जोर से गुर्राते हुए कहा, क्यों, हमारे साथ ही क्यों हुआ? हम इतने सालों से तड़प रहे हैं, ना चाहते हुए भी आज ये शापित जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या कोई भी नहीं है जो हमें इस पिशाच के जीवन से मुक्ति दिला सकेगा? उस अनजाने में की गई गलती की हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। दम घुटता है हमारा इस जीवन से, हमें मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति। बोलते हुए रिवांश की आंखें छलक उठी और इसी के साथ वो अपने इंसान स्वरूप में आ गया। उसके अंदर की तरफ उसके आंखों से पानी बनकर बह रही थी, जहां वो इस पिशाची जीवन से मुक्ति पाना चाहता था। क्रमशः